से करना है
इन्हें बताया एक एक चैप्टर का नोटिस पढ़ेंगे उसमें कुछ नोट्स
बनाए वो हम बताएंगे ना मतलब चर्चा करेंगे
लोग जैसे बीच में आ गया वो श्लोक
लेकिन यहाँ पे आप बुक्स कहाँ पे हैं किनके पास हैं
मोबाइल में पढ़ने पड़ेंगे
अच्छा तो कर लो ऐसे कर लो बीच में वो आएगा तो मैं पढ़ दूंगा क्या आप लोग पढ़ो अभी ए स्टोरी ड्यूरिंग फिफ्थ मनुज रेवता मनु चल रहा है ना अभी रेवता मनु फिफ्थ मनु रेवता मनु है अभी सातवा मनमंत्र चल रहा है ना तो उसमें से पांचवा मनु जो है रेवता मनु के बारे में जोर से पढ़िएगा
चैप्टर
कैंटो है पता चला आप लोग चलो हाँ
Chapter 5. Sukhdev Goswami continued. O King, I have described to you the pastime of Gajendra Mokshana, which is most pious to hear. By hearing of such activities of the Lord, one can be freed from all sinful reactions. Now please listen as I described Revat Manu. The brothers of Tamas Manu was the fifth Manu named Revat. His sons were headed by Arjun, Bali and Vindhya. O King, in the millennium of Revat Manu, the King of Heaven was known as Vibhu. Among the demigods were the Bhutrayas and among the seven Brahmanas who occupied the seven planets were Hiranyarom, Vedashri and Purdvabahu. From the combination of Shubhra and his wife Vikunta, there appeared the Supreme Personality of Godhead Vaikuntha along with demigods who were his personal plenary expansions. Just to please the goddess of fortune, the Supreme Personality of Godhead Vaikunth, at her request, created another Vaikunth planet which is worshipped by everyone. Although the great activities and transcendental qualities of the Supreme Personality of Godhead's various incarnations are wonderfully described, sometimes we are unable to understand them. Yet everything is possible for Lord Vishnu. If one could count the atoms of the universe, then he could count the qualities of the Supreme Personality of Godhead. But no one can count the atoms of the universe, nor can anyone count the transcendental qualities of the Lord. The son of Chakshushu, known as Chakshusha, was the sixth Manu. He had many sons, headed by Puru, Purush and Sudharman. During the reign of Chakshusha Manu, the king of heaven was known as Mantradrum. Among the demigods were the Apyas and among the great series were Havishman and Vrak. In this sixth Manvantara millennium, Lord Vishnu, the master of the universe, appeared in his partial expansion. He was begotten by Vairaj in the womb of his wife Dev Sambhuti and his name was Ajita. By churning the ocean of milk, Ajita produced nectar for the demigods. In the form of tortoise, he moved here and there, carrying on his back the great mountain known as Mandra. King Parishit inquired, O great Brahman, Sukhdev Goswami, why and how did Lord Vishnu churn the ocean of milk? For what reason did he stay in the water as a tortoise and hold up Mandra mountain? How did the demigods obtain the nectar? And what other things were produced from the churning of the ocean? Kindly describe all these wonderful activities of the Lord.
ये समुद्र मंथन फिफ्थ मनु मनु के उसमें हुआ ना सिक्स्थ
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 My heart, which is disturbed by the three miserable conditions of material life, is not yet sated with hearing you describe the glorious activities of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, who is the master of the devotees. Srila Sukadeva Goswami said, O learned Brahmanas assembled here at Naimisharanya, when Sukadeva Goswami, the son of Dwapara, was thus questioned by the king, he congratulated the king and then endeavored to describe further glories of the Supreme Personality of Godhead. Sukadeva Goswami said, when the Asuras with their serpent weapons severely attacked the demigods in a fight, many of the demigods fell and lost their lives. Indeed, they could not be revived. At that time, O king, the demigods had been cursed by Durvasa Muni. The three worlds were poverty stricken and therefore ritualistic ceremonies could not be performed. The effect of this were very serious. Lord Indra, Varuna and other demigods, seeing their lives in such a state, consulted among themselves, but they could not find any solution. Then all the demigods assembled and went together to the peak of Sumeru mountain. There in the assembly of Lord Brahma, they fell down to offer Lord Brahma their obeisances, and then they informed him of all the incidents that had been taking place. Upon seeing that the demigods were bereft of all influence and strength, and that the three worlds were consequently devoid of auspiciousness, and upon seeing that the demigods were in an awkward position, whereas all the demons were flourishing, Lord Brahma, who is above all demigods and who is most powerful, concentrated his mind on the Supreme Personality of Godhead. Thus, being encouraged, he became black-faced and spoke the demigod as follows.
हिंदी में दिक्कत है किसी
ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव जी, तुम सारे देवता, असुर, स्वदेश प्राणी, अंडज, धरती से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भूमि से उत्पन्न सारे जीव, सभी भगवान से उनके रजोगुण अवतार ब्रह्मा गुण अवतार तथा ऋषियों से जो मेरे ही अंश हैं, अतएव हम सभी उन भगवान के पास चले और उनके जन्म कमलों की शरण ग्रहण करें। भगवान के लिए ना तो कोई वर्ग है, ना रक्षणीय, ना उपेक्षणीय और ना पूजनीय, फिर भी यमुना समय अनुसार सृष्टि पालन तथा संहार के लिए वे सतो रजो या तमो गुण में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं। देहधारी जीवों के सतोगुण का आह्वान करने का यही अवसर है। सतोगुण भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है, जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा। अतः भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए यह उपयुक्त समय है, क्योंकि वे देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु हैं और उन्हें प्रिय है, अतः वे हमें निश्चय ही सौभाग्य प्रदान करेंगे। ये समस्त शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज परीक्षित देवताओं से बातें करने के बाद ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के धाम ले गए, जो इस भौतिक जगत से परे है। भगवान का धाम श्वेत द्वीप नामक टापू पे है, जो क्षीर सागर में स्थित है। वहाँ श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की, यद्यपि उन्होंने
सुनाई दे रहे पीछे
यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को उसके पूर्व कभी नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने वैदिक वाङ्मय से भगवान के विषय में सुना हुआ था। अतः उन्होंने स्थिरचित होकर भगवान की उसी तरह स्तुति की जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई या मान्य है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वर, हे अभिकारी, असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम हैं। सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। निस्संदेह आप अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ है। आप सबके परम स्वामी हैं, अतः आप हर एक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते रहते हैं कि किस प्रकार प्राण, मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के प्रकाशक हैं और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं गया। उनका भौतिक शरीर नहीं होता जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो।
वे पक्षपात तथा भौतिकवादी विद्या के अज्ञान से मुक्त हैं, अतः मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो नित्य सर्वव्यापक तथा आकाश के समान विशाल है और तीनों गुणों तीनों युगों सत्य त्रेता तथा द्वापर में अपने षट ऐश्वर्यों समेत प्रकट होते हैं। भौतिक कार्यों के चक्र
हमें चार चैप्टर कवर करना है, फोर चैप्टर कवर करना है ना, कितना करना है?
नोट्स में है।
तो ये कैसे पता चलेगा, जैसे बीच में वो आ गया तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे लिखा है ऐसे, मैं बताता हूँ इसे 8.5.5 श्रीमद् भागवत में लिखा है, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सुघ्रा एंड हिज वाइफ विकुंथ देयर अपीयर्ड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड वैकुंथ अलोंग विद द डेमिगॉड्स who were his personal plenary expansions. तो इसके ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पढ़ लिया ना आपने, तो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें थोड़ा प्रभु ने स्पेसिफाई किया है, जस्ट टू प्लीज द गॉडेसेस ऑफ फॉर्च्यून द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड वैकुंथ एट हर रिक्वेस्ट क्रिएटेड अनदर वैकुंथ प्लेनेट which is worshipped by everyone. Everyone मतलब from highest planetary system to the lowest. All living entities. From highest to lowest. Purport. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura remarks here that this Vaikuntha planet, मतलब जो ये अभी बनाया लक्ष्मी जी के request में, like Srimad Bhagavatam appears and is said to be born or created, but both Srimad Bhagavatam and Vaikuntha eternally exist beyond the material universes. ये कौन है, ये देखना है, ये बेरा रा घावा आचार्य कौन है?
ये तो देखना पड़ेगा कौन सा 8.5.5 देख 8.5.5 वीरार घवा आचार्य
वीरार घवा हाँ वीरार घवा आचार्य मेंशंस दैट दिस वैकुंठ इज विद इन द यूनिवर्स इट इज सिचुएटेड अबोव द माउंटेन नोन एज लोका लोका माउंटेन कौन सा है?
बिल्कुल आखिरी में बहुत बड़ा माउंटेन है, सन के रेज को कैप्चर कर सकता है।
सुमेरु पर्वत तो नहीं है ना?
नहीं नहीं
बता बता
जो भूमंडल है ना,
हाँ
भूमंडल में 7 आइलैंड्स हैं,
हाँ
तो हम अभी जो आइलैंड पे रह रहे हैं वो है जम्बू द्वीप के बीच,
हाँ
सुमेरु माउंटेन उसी में है,
हाँ
जो लोका लोक बात हो रही है वो सबसे आखिरी है।
अच्छा अच्छा लास्ट में, अच्छा एक धुरी जो है इस पार है, एक धुरी उस पार है, जो इस पार है बीच वाला है वो है सुमेरु पर्वत, और लोका माउंटेन जो है उस पार है ना आखिरी में है। अच्छा अच्छा ठीक है, नया आप लोग को पता चला ठीक है, लोका लोका दिस प्लैनेट इज वर्शिप्ड बाय एवरीवन, ये पार्ट पार्ट में लिखा है। इन दिस 6 मनमंत्र ये है 8.5.9 ये भी पढ़ चुके हैं ना हम लोग। In this 6 Manmantara millennium, Lord Vishnu, the master of the universe, appeared in his partial expansion. He was begotten by Viraja in the womb of his wife, Devasambhuti, and his name was Ajita. Now, 8.5.10 by churning the ocean of milk, अजिता प्रोड्यूस नेक्टर फॉर द डेमिगॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ए टॉर्टॉइस ही मूव्ड हियर एंड डियर कैरिंग ऑन हिज बैक द ग्रेट माउंटेन नोन एज मंदरा। ये अजिता वो टॉर्टॉइस का नाम है या फिर अजिता एक व्यक्ति है, बाद में उन्होंने टॉर्टॉइस का रूप ले लिया, ऐसे लिखा है यार। और वो भगवान की पर्सनल एक्सपेंशन है। ऐसा है ना, डेमिगॉड वेर डिफीटेड बाय डिमॉन्स, एक अलग से लिखा प्रोविजन है, डेमिगॉड्स वेर डिफीटेड बाय दे वेर कर्स्ड बाय दुर्वासा मुनि। अब ये पढ़ा हमने, आप देखो 15-16 पार्ट पार्ट में श्रील प्रभुपाद का स्टोरी ऑफ इंद्र कर्स बाय दुर्वासा मुनि, मतलब इंद्र को दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था उसके ऊपर है 15-16 पार्ट पार्ट। इट इज डिस्क्राइब दैट व्हाइल दुर्वासा मुनि वॉज पासिंग ऑन द रोड ही सॉ इंद्र ऑन द बैक ऑफ हिज एलिफेंट एंड वॉज प्लीज टू ऑफर इंद्र ए गार्लैंड फ्रॉम हिज ओन नेक। Indra, however, being too puffed up, took the garland and without respect for Durvasa Muni, he placed it on the trunk of his carrier elephant. The elephant, being an animal, could not. देखो यहाँ का animal भी होता है, हर सुरक्षा की animal standard high है. The elephant, being an animal, could not understand the value of the garland. And does the elephant threw the garland between its leg and smashed it? हम उसमें भी सुनते हैं कृष्ण लीला में बंदर भी ऐसा ही करता है वहां पर भी ना, पहले गोलोक का है लेकिन हरकत ऐसा ही है। Seeing this insulting behavior, Durvasa Muni immediately called to be a poverty stricken. अद्भुत बात है ना, देखो हमारे पास कितने सारी चीजें होती है लेकिन कभी भी छीना जा सकता है, हमको पता नहीं सामने वाले व्यक्ति को जिनको हम दिखा रहे हैं टू पॉप्ड अप, यू हैज पॉप्ड अप, लेकिन हो सकता है वही व्यक्ति आपको क्या कर दे। तो यहाँ पे प्रोविजन ने लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है टू बी मेटेरियल ऑपोनेंट इज समटाइम रिस्की, वन शुड बी केयरफुल। इतना अच्छा पॉइंट है ना, तो भी मेटेरियल ओपुलेंट इज समटाइम रिस्की। तो प्रोविजन यहाँ पे शायद में लिखा है वन शुड बी केयरफुल टू हैव मेटेरियल ओपुलेंट। उसके बाद प्रोविजन लिखे है इसमें अलग अलग करके लिखे हैं क्यों ऐसा है, इसका सब पॉइंट है। When one is materially opulent, he should learn to be sober and well behaved toward Vaishnavas and saintly persons, otherwise he will fall down. In Bible also,
गुरुजी आदम कृष्ण
मैं तो आप
मैं स्पीकर नहीं हूँ, प्रभु जी है। इन द बाइबल ऑल्सो इट इज रिटन दैट फॉर रिच इट इज हार्ड टू रीच हेवन। उसके बाद लिखते हैं प्रभु जी नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज हार्ड। क्यों? क्योंकि जो मेटेरियल ऑपुलेंस है उसको भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा ना, नहीं? अब भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे उसको तो वही जो मेटेरियल ऑपुलेंस है वो दिक्कत देंगे, क्योंकि भगवान की है ना। अब आपके पास आए ऐसे कभी कभी होता है, मेरा ये मैं जोड़ रहा हूँ उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस है, ये कभी कभी होता है हम सीनियर है, हम सीनियर कभी कभी क्या करते हैं डिवोटीज को लगा देते प्रभु जी वो दे देना ये दे देना। तो उनको भगवान की सेवा में नहीं लगाया, अपने सेवा में लगा लेते, डिवोटीज भी जो है थोड़ा सा नाराज सा हो जाते हैं कि आप प्रभु जी मुझे गलत जगह लगा रहे। तो उसी प्रकार से जो भौतिक शक्तियां है वो भगवान की हैं, तो भगवान की जो भौतिक शक्तियां है उनको अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो हमें क्या देने लगते हैं, वही चीज दिक्कत देने लगते हैं ना। तो यहाँ पे इसलिए लिखे है इट इज हार्ड टू रीच हेवन, बाइबल में लिखा है इट इज हार्ड टू रीच हेवन, नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज हार्ड, इट इज हार्डर. वी हैव टू बी क्या, उसका तो कुछ नहीं, वी हैव टू बी. तो उसके बाद पॉइंट लिखे है प्रभु जी, इन कलियुगा इवन पोर ऑल्सो हैव फॉल्स ईगो, इवन पोर ऑल्सो हैव फॉल्स ईगो. अब देखने में तो हम सबका दशा जो है ये विनम्र है, अगर देखा जाए स्वर्ग के धरातल से अगर हमारा दशा देखा जाए, वो तो जैसे हमारे दशा में चूहर कीचड़ में रहते हैं, वो स्वर्ग की तुलना में हम लोग भी, हमारा दशा भी ऐसा है जो भौतिक संसार में है पृथ्वी में. लेकिन फिर भी देखो आप जाओ, हम सब देखते हैं ना कितने अहंकार होते हैं जो धनी है, सो कॉल्ड रईस है. उसी प्रकार से जो गरीब के समाज है, जैसे मान लो उनका भी एक सोसाइटी होता है, उनमें भी वो लोग जो है हम देखते हैं रस्ते में जो गरीब होते हैं या भिखारी जो होते हैं वो लोग भी लाइन लगा के बैठते हैं, तो उनमें भी अहंकार है. कभी कभी तो हम देखते हैं जैसे कभी दान देते हैं, अब किसी भक्त के पास पैसा नहीं होता है, थोड़ा कम दे देता है, तो उनको ये कोई लक्ष्मी दे रहे हो इस तरह से. तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्रभु जी लिखे इवन कलियुगा, कलियुग में इवन पोर हैज हैव फॉल्स ईगो, पोर हैव, ऐसे पोर का कंडीशनिंग ऐसा है कि जो सिचुएशन है ऐसा है कि उनको विनम्र होना चाहिए, कंडीशनिंग ऐसा है कि उनको नेचुरली क्या होना चाहिए, विनम्र होना, लेकिन तमोगुण इतना ज्यादा है कलयुग में कि वो दशा को भी वो क्या करता है, नहीं उससे सीख पाते हैं, और फिर भी क्या रहता है, इगोइस्टिक रहता है बिल्कुल. उसके बाद 19-20 के पारपोर्ट ये पढ़े हम श्लोक. तो यहाँ पे पारपोर्ट में प्रभु ने स्पेसिफाई किया है ये पॉइंट, ब्रह्मा बिकेम कंसर्न्ड ऑफ डेमीगॉड्स. सो हमारे दशा ऐसा नहीं होता, डेमीगॉड्स का दशा भी ऐसा होता है कि ब्रह्मा बिकेम कंसर्न्ड अबाउट डेमीगॉड्स बिकॉज डिमॉन्स टूक द पावर. डिमॉन्स टूक श्रील रूप गोस्वामी फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट हिज मिनिस्टरशिप एंड वेंट टू वृंदावन फॉर द बेनिफिट ऑफ एंटायर वर्ल्ड लोकाना हित कारिण. दिस इज द नेचर ऑफ ए सेंटली पर्सन और डेमीगॉड. इवन इम्पर्सनलिस्ट थिंक ऑफ द वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल. दास ब्रह्मा वॉज वेरी मच कंसर्न एट सींग डिमॉन्स इन पावर. तो बताएंगे थोड़ा सा इसको, थोड़ा हाईलाइट करें, बता.
जिस प्रकार जैसे रूप गोस्वामी वृंदावन चले गए छोड़ के,
किसके किसके लिए,
ताकि जो
अपना भजन करने के लिए
नहीं, जो यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग फंसे हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए वो बुक्स लिखे हैं, ऐसा प्रचार के माध्यम के उद्देश्य से हो गए उनको लिबरेट करते हैं. उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी जब कुछ देखते हैं कि खतरा होता है, किसी दुष्ट लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो जो है अच्छे लोगों का,
क्योंकि अल्टीमेट पावर में कौन है, भगवान है, तो बीच में भी अगर डिमॉन्स आ जाता है पावर में तो काफी लोगों को दिक्कतें होती. आज अभी क्लास में बताया था ना श्रीमद भागवतम क्लास में, चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के ऊपर कितना अच्छा पॉइंट बताया. उसके बाद 8.5.23 पर पॉड पढ़े हम परसों, कितना 28. तो अब सुनो पारपोर्ट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देयरफोर नॉट टू स्पीक ऑफ गोइंग टू द मून इवन इफ वन इज प्रोमोटेड टू द हाईएस्ट प्लैनेटरी सिस्टम ब्रह्मलोका, देयर कैनॉट बी एनी हैप्पीनेस इन द मटेरियल वर्ल्ड. If one is actually wants happiness, one must go to the spiritual world. ये पहले लेते हैं 29 तक. कुछ इसमें वो करेंगे, बताओ क्या बताना
चाहिए. बीमारी है, बुढ़ापा है, ये सब चीजें तो नहीं है फिर भी, और जो भी वहाँ पे जो साधु संत है, जब सिस्टम प्रलय होता है शास्त्रों के साथ, तो
जब भी ऐसा कहा जाता है कोई भी चीज नकारता जाता है या फिर कोई भी चीज सकारात्मक होता है, सकारात्मक मतलब स्पिरिचुअल और नकारात्मक मतलब मेटेरियल। अब वहां पे सुख नहीं है ऐसा कह रहे हैं, मतलब देयर इज नो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और वी आर स्पिरिट सोल। अगर हम ये देखें कि वहां पे मेटेरियल प्लेजर है कि नहीं, मेटेरियल प्लेजर है बट दैट इज ए चीटिंग फॉर स्पिरिट सोल। तो इस कारण से ये बताया जाता है कि वहां पे कोई सुख नहीं है। लॉर्ड अदरवाइज अगर देखा जाए कि भौतिक धरातल पे तो सुख है, सुअर को भी क्या मिल रहा है? रूपा तो सारे उसमें जो है यही बता रहे हैं कि मेटेरियल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, मेटर। तो नीचे से लेकर ऊपर तक आत्मा के लिए कोई आनंद नहीं है। और जो हमारा वो है भागवत गीता से शुरू होता है तो शुरुआत यही है कि ये श्लोक से शुरुआत होता है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। तो आगे की जितने भी कहानी है ये सब क्या है? आत्मा के लेवल की। द मेटेरियल वर्ल्ड, अब देखो प्रभुपाद लिख रहे हैं, द मेटेरियल वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज ए वेल नोन प्रिंसिपल, बट द पोअर सोल्स ऑफ द मेटेरियल वर्ल्ड डू नॉट नो व्हाट इज सर्वाइवल एंड हु इज फिट। सर्वाइवल डज नॉट मीन दैट वन शुड डाई, सर्वाइवल मीन्स दैट वन शुड नॉट डाई but should enjoy an everlastingly blissful life of knowledge. This is survival. The Krishna conscious movement is meant to make every person fit for survival. Indeed, it is meant to stop the struggle for existence. उसके बाद 8.5.24 के पार्ट पार्ट में बताया है। महाराज परीक्षित इज एड्रेस्ड हियर एज अरिंदमा, अरिंदमा मतलब सब्डुअर ऑफ ऑल एनिमीज। नॉट ओनली वी हैव एनिमीज आउटसाइड ऑफ आवर बॉडीज बट विद इन आवर बॉडीज देयर आर मेनी एनिमीज सच एज लस्ती, डिजायर्स, एंगर, ग्रीड। तो ये पॉइंट हम भूल जाते हैं, और कभी कभी तो हम क्या करते हैं, इनके ही पक्ष लेने लग जाते हैं। तो शत्रु है, जब हम खुद ही शत्रु का पक्ष लेने लग जाए, अब बाहर से कोई डिवोटी कोई क्या रक्षा कर सकते हैं, तब तो उसको पीटने डांटते हैं तो गुरुदेव या फिर इस तरह से। तो दोनों तरफ शत्रु है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। महाराज परीक्षित इज स्पेसिफिकली एड्रेस्ड एज अरिंदमा बिकॉज इन हिज पॉलिटिकल लाइफ he was able to subdue all kind of enemies, and even though he was a young king, as soon as he heard that he was going to die within 7 days, he immediately left his kingdom. He did not follow the dictates of enemies within his mind, within his body, such as lust, greed and anger. He was not at all angry with the muni's son who had cursed him. Rather, he accepted the curse and prepared for his death in the association of Sukadev Goswami. ऐसे इस तरह प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली लिखा ना कि इन द एसोसिएशन ऑफ सुखदेव गोस्वामी। तो इस्कॉन भी ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि हमें जीना भी भक्तों के साथ है और मृत्यु के समय भी क्या होता है, भक्ति होते हैं। That is inevitable. No one can surpass the force of death. Death matlab kal. Therefore, Maharaj Parikshit, while fully alive, wanted to hear Srimad Bhagavatam. He is consequently addressed here as Arindama. Yahan pe aisa hota hai ki hum jab Bhagwan ki bhakti karne aate hain, to ya phir Bhagwan ki bhakti mein lage rehna hai puri tarah se, तो हमारे अंदर की जो शत्रु है वो हमें क्या करते हैं, बाधा देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए अरिंदम शब्द का व्यवहार किया है कि सारे बाधाओं को दमन करते हुए हमें क्या करना चाहिए, जो 7 दिन का परीक्षित महाराज का था वो पूरी तरह से उन्होंने सुना, उसी प्रकार से हमें भी श्रवण करना चाहिए। उसने बताया, उसी पार्ट में बताया, इज सीइंग द लॉर्ड नेसेसरी, ऐसा क्वेश्चन लिखा है प्रभु जी, इज सीइंग द लॉर्ड नेसेसरी, या ये हमारे है इज सीइंग द लॉर्ड इज नेसेसरी, तो पार्ट पार्ट में लिखा है दीज टू सॉन्ग्स श्री कृष्ण चैतन्य एंड द हरे कृष्ण महामंत्र आर सफिशियंट टू प्लीज सुप्रीम लॉर्ड ऑफ गॉड हेड ऑल्दो वी कैनॉट सी हिम. Seeing the Lord is not as important as appreciating Him. From the authentic literature or the authentic statements of authorized person. ये 8.5.25 part. उसका 26 के part part में लिखे हैं. We belong to the disciplic succession of Brahma. And therefore we are known as Brahma Sampradaya. As the demigods followed the Lord Brahma to understand the supreme personality of Godhead, we also have to follow the authorities of Parampara system to understand the Lord. अब पढ़िए प्रभु जी. उसमें लिखे हैं कि सन इज द आई ऑफ द लॉर्ड एंड मून इज द माइंड ऑफ द लॉर्ड.
भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है. 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 15 अरे बनाते हैं. प्रकृति के 3 गुण सत्व रजत और तमस कार्यकलापों के केंद्र बिंदु हैं और प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार इस पहिए की बाहरी परिधि बनाते हैं. बहिरंगा भौतिक शक्ति इस पहियो को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है. इस प्रकार यह पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय आधार अथवा अर्थात भगवान के चारों ओर घूमता है जो परमात्मा सदा चरम सत्य है. हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं.
यहाँ पे 41 का पर्पट है तो आप 41 तक पढ़ सकते हैं.
भगवान शुद्ध तत्व में स्थित है अतः वे एक वर्ण ओंकार हैं. क्योंकि भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं अतः वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते. फिर भी वे दिख या काल द्वारा हमसे प्रकट नहीं होते अपतु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं. अपने वाहन गरुड़ पर आतीन उनकी पूजा शोक से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के द्वारा योग शक्ति से की जाती है. हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हैं. कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं पा सकता जो इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की विधि गवा देता है. किंतु वही माया जो भगवान के वंश में रहती है वही माया भगवान के वश में रहती है जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं. हम उन्हें नमस्कार करते हैं. क्योंकि हमारे शरीर सत्व गुण से निर्मित है इसलिए हम देवगण भीतर तथा बाहर से सद्गुण में स्थित हैं. सारे संत पुरुष भी इसी प्रकार स्थित हैं अतः यदि हम भी भगवान को न समझ पाए तो नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजो तथा तमोगुण में स्थित है. मना वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं. हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं. इस प्रकार पृथ्वी पर 4 प्रकार के जीव हैं और ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं. ये भौतिक शक्ति उनके चरण कमलों पर टिकी है. वे ऐश्वर्य तथा शक्ति से उत्कृष्ट परम पुरुष हैं जो हम पर प्रसन्न है. सारा विराट जगत जल के उद्भूत है और जल के कारण सारे जीव बने रहते हैं जीवित रहते और विकसित होते हैं. यह जल भगवान के वीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है अतः इतनी महान शक्ति वाले गुरु पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न है. सोम चंद्रमा समस्त देवताओं के अन्य बल और दीर्घायु का स्रोत है. वह सारी वनस्पतियों का स्वामी और सारे जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी है. जैसा कि विद्वानों ने कहा है चंद्रमा भगवान का मन है, ऐसे समस्तों के स्रोत भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। अनुष्ठानों की आहुतियाँ ग्रहण करने के लिए उत्पन्न अग्नि भगवान का मुख है, सागर की गहराइयों के भीतर भी संपदा उत्पन्न करने के लिए अग्नि रहती है, और उधर में भोजन बचाने के लिए तथा शरीर पालन हेतु विभिन्न द्रावों को उत्पन्न करने के लिए भी अग्नि उपस्थित रहती है। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हैं।
आगे देखिए, थोड़ा सा और लाउडली पढ़िए, बोल सुनाई।
ही इज द चीफ सोर्स ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास, ही इज द अबोड वेयर द एब्सोल्यूट ट्रुथ कैन बी वर्शिप, ही इज द गेटवे ऑफ लिबरेशन एंड ही इज द सोर्स ऑफ इटर्नल लाइफ एज वेल एज द कॉज ऑफ डेथ। द सन गॉड इज द आई ऑफ द लॉर्ड, मे दैट सुप्रीम लॉर्ड हु इज सुप्रीमली ऑपुलेंट बी प्लीज्ड विद अस। All living entities, moving and non-moving, receive their vital force, their bodily strength and their very lives from the air. All of us follow the air for a vital force, exactly as servants follow an emperor. The vital force of air is generated from the original vital force of the Supreme Personality of Godhead. May that Supreme Lord be pleased with us. 38. May the supremely powerful personality of Godhead be pleased with us. The different directions are generated from his ears, the holes of the body come from his heart, and the vital force, the senses, the mind, the air within the body, and the ether, which is the shelter of the body, come from his limbs. 39. Mahin, the king of heaven, was generated from the prowess of the Lord. The demigods were generated from the mercy of the Lord. Lord Shiva was generated from the anger of the Lord, and the Lord Brahma from his sober intelligence. The Vedic mantras were generated from the bodily holes of the Lord, and the great saints and pratapatis were generated from his genitals. May that supremely powerful Lord be pleased with us. 40. The goddess of fortune was generated from his chest, the inhabitants of Pitru Lok from his shadow, religion from his bosom, and irreligion, the opposite of religion, from his back. The heavenly planets were generated from the top of his head, and the apsaras from his sense enjoyment. May that supremely powerful personality of God be pleased with us. 41. The brahmanas and the Vedic knowledge come from the mouth of the supreme personality of God. The kshatriyas and the bodily strength come from his arms, and vaishyas and their expert knowledge in productivity and wealth come from his eyes, and the shudras who are outside of Vedic knowledge come from his feet. May that supreme personality of God, who is full in progress,
एक्सेलेंट। यहाँ पे 8.5.41 का पर्पट प्रभुजी ने लिखा है, द ब्राह्मणस एंड द वैदिक नॉलेज कम फ्रॉम द माउथ ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द क्षत्रियस एंड द बॉडीली स्ट्रेंथ कम फ्रॉम हिज आर्म्स, द वैश्यस एंड देयर एक्सपर्ट नॉलेज इन प्रोडक्टिविटी एंड वेल्थ कम फ्रॉम हिज थाइज, एंड द शूद्रस who are outside of Vedic knowledge, come from his feet. उसके बाद लिखते हैं, heading है, reject the material world. क्या? Reject the... One has to return home back to Godhead. For this is the highest perfection of life. To go back to the Godhead means to reject this material world. Although we cannot understand the functions of this material world and whether it is good for us or bad for us, in accordance with the advice of the Supreme Authority, we must reject it and go back home, back to Godhead. As stated elsewhere in Srimad Bhagavatam 4.31.14, ये तो पूरा संस्कृत श्लोक है, यथा तरोर मूला निनेचनेन तपयन्ति तत् स्कंध भुजो पक्ष। ये है किसी के पास? 41 का पार्ट पार्ट में तप्यन्ति तत् स्कंध प्रॉपर्टी नहीं है एट पॉइंट फाइव पॉइंट फोर्टी वन में परपट नहीं है। अच्छा प्रोविजन ने स्पेसिफाई किया होगा रिजेक्ट द मेटेरियल वर्ल्ड अच्छा तो ये इस श्लोक का अर्थ किसी को पता है क्या
हम श्लोक ढूंढेंगे आपको कौन सा है
ये भागवतम की 4.31.14 है हाँ उसके बाद अच्छा अब 8.6.13 तक कुछ है नहीं तो आप लोग पढ़ सकते हो
Greed is generated from his lower lip, affection from his upper lip, bodily lust from his nose, animalistic lusty desires from his sense of touch, Yamaraj from his eyebrows, and eternal time from his eyelashes. May the Supreme Lord be pleased with us. What it means? All learned men say that the five elements, eternal time, fruitive activity, the three modes of material nature, and the varieties produced by these modes are all creations of Yog Maya. This material world is therefore extremely difficult to understand. But those who are highly learned have rejected it. May the personality of Godhead, who is the controller of everything, be pleased with us. 44. Let us offer our respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, who is completely silent, free from endeavor, and completely satisfied by his own achievements. He is not attached to the activities of the material world through his senses. Indeed, in performing his pastimes in this material world, he is just like the unattached air. O Supreme Personality of Godhead, we are surrendered unto you. Yet we wish to see you. Please make your original form and smiling lotus face visible to our eyes and appreciable to our other senses. 46. O Lord, O Supreme Personality of Godhead, by your sweet will, you appear in various incarnations, millennium after millennium, and act wonderfully, performing uncommon activities that would be impossible for us. 47. Dharmis are always anxious to accumulate wealth for their sense gratification, but for that purpose they must work very hard. Yet even though they work hard, the results are not satisfying. Indeed, sometimes their work results only in frustration. But devotees who have dedicated their lives to the service of the Lord can achieve substantial results without working very hard. These results exceed the devotees' expectations. 48. Activities dedicated to the Supreme Personality of Godhead, even if performed in small measure, never go in vain. The Supreme Personality of Godhead, being the Supreme Father, is naturally very dear and always ready to act for the good of the living entity. 49. When one pours water on the root of a tree, the trunk and the branches of the tree are automatically pleased. Similarly, when one becomes a devotee of Lord Vishnu, everyone is served, for the Lord is the super soul of everyone. 50. My Lord, all obeisances unto you. You are the eternal, beyond time's limit of past, present and future. You are inconceivable in your activities. You are the master of the three modes of material nature. And being transcendental to all material qualities, you are free from material contamination. You are the controller of all three modes of nature, but at the present, you are in favor of the quality of goodness. Let us offer you respectful obeisances and unto
Thus, आगे बढ़ेंगे. कितना लंबा है? एक चैप्टर हो गया. अच्छा अब सिक्स चैप्टर आ गया ना? क्या है सिक्स चैप्टर का? Lord appeared before Brahma and Shiva. अच्छा चलिए पढ़े आगे पढ़े नीजिए पढ़ लीजिए जोर से पढ़िएगा
अध्याय है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि घोषणा। श्रीदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा दीक्षित, देवताओं तथा ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्थितियों से पीड़ित भगवान हरि उन सबके समक्ष प्रकट हो गए। उनका शारीरिक तेज एक साथ हजारों सूर्यों के उदय होने के समान था। भगवान के तेज से सारे देवताओं की दृष्टि को निहार ली। वे न तो आकाश दिशाएं पृथ्वी को देख सके, न ही अपने आप को देख सके। अपने समक्ष उपस्थित भगवान को देखना तो दूर रहा। शिव जी सहित ब्रह्मा जी ने भगवान के निर्मल शारीरिक सौंदर्य को देखा, जिनका श्यामल शरीर मरकत मणि के समान है, जिनकी आंखें कमल के फूल के दूसरी भाग जैसी लाल लाल है, जो पिंगलेश होने जैसे पीले वस्त्र धारण किए हैं, और जिनका सरूचा शरीर आकर्षक ढंग से सज्जित है, उन्होंने उनके सुंदर मुस्काते कमल जैसे मुखमंडल को देखा, जिसके ऊपर बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मुकुट था। भगवान की भौहें आकर्षक है और उनकी गालों पर कान के कुंडल शोभित रहते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी ने भगवान की कमर में पेटी, उनकी बाहों में बाजूबंद, वस्त्र स्थल पर हार और पांव में पायल देखे। भगवान फूल की मालाओं से अलंकृत थे, उनकी गर्दन में कुमकुम मणि अलंकृत थी और उनके साथ लक्ष्मी भी थी। तथा में चक्र गदा इत्यादि नीति आयुध लिए हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी तथा अन्य देवताओं के साथ भगवान के स्वरूप को इस तरह देखा तो सबने भूमि पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया।
जब 13 नंबर वर्ष आएगा तो रुक जाइएगा। 13
ब्रह्मा जी ने कहा यदि भी आप अनुमान है तो अवतार के रूप में आपका भारत होना आप भारत के समान दिव्य आनंद आते हैं। अपने दिव्य स्वरूप में नित्य रहते हुए आप अपने स्वरूप से भी खुश हैं। अतः हम आपको
ये 13 नंबर वर्ष था, कितना था?
जो लोग परम समाधि की कामना करते हैं वे वैदिक मंत्रों के अनुसार आपके ईश्वर रूप को पूजा करते हैं। ये प्रभु हम आपके तीनों लोगों से भेज सकते हैं।
अच्छा प्रभु जी, वो गुरु जी को थोड़ा लाउड।
सदैव पूर्ण स्वतंत्र रहने वाले मेरे प्रभु, ये सारा दृश्य जगत आपसे उत्पन्न होता है, आपका टीका रहता है और आप में लीन हो जाता है। आप ही प्रत्येक वस्तु के आदि मध्य तथा अंत है। जिस तरह पृथ्वी मिट्टी के पात्र का कारण है, वो उस पात्र को आधार प्रदान करती है और जब पात्र टूट जाता है तो अंततः उसे अपने में मिला लेती है। आप अपने में स्वतंत्र हैं और दूसरों से सहायता नहीं लेते। आप अपनी शक्ति से इस दस जगत का भजन करके इसमें प्रवेश कर जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावना में इसमें बड़े करे हैं, जो प्रमाणित शास्त्रों से भली भांति परिचित हैं और जो भक्ति योग के अभ्यास से सारे भौतिक कल्प शीघ्र हो जाते हैं, वे शुष्क मन से ये देख सकते हैं कि आप भौतिक गुरुओं के रूपांतरों के भीतर रहते हुए भी इन गुरुओं के अच्छे रहते हैं। जिस प्रकार काट से अग्नि गाय के थन से दूर, भूमि से अन्न तथा जल और औद्योगिक उद्यम में जीविका के लिए समृद्धि प्राप्त की जा सकती है, उसी तरह इस भौतिक जगत में मनुष्य भक्ति योग के अभ्यास द्वारा आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है या बुद्धि से अपने पास या बुद्धि से आपके पास पहुंच सकता है। जो पुण्य आत्मा है वे इसकी पुष्टि करते हैं। जंगल की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा जल प्राप्त होने पर अत्यंत प्रसन्न होता है होते हैं। इसी प्रकार हमें कमलनाथ प्रभु क्योंकि आप हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं, अतः हम दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें से आकांक्षा थी, अतः आपका दर्शन पाकर हमने अपने जीवन के चरण लक्ष्य को पा हमने अपने जीवन के परम लक्ष्य को पा लिया है।
इंग्लिश में लिखा है कि एलिफेंट्स एफ्लिक्टेड बाय ए फॉरेस्ट फायर बिकम वेरी हैप्पी व्हेन दे गेट वाटर फ्रॉम गैंजेस। सिमिलरली ओ माय लॉर्ड फ्रॉम हुज नेवल ग्रोज ए लोटस फ्लावर सिंस यू हैव नाउ अपीयर्ड बिफोर अस वी हैव बिकम ट्रांसेंडेंटली हैप्पी बाय सीइंग योर लॉर्डशिप हुम वी हैव डिजर्व टू सी फॉर ए लॉन्ग टाइम we have achieved our ultimate goal in life. Purport. Usme char star mark hai. Prabhuji ne likh diya hai. Purport. The devotees of the Lord are always very eager to see the Supreme Lord face to face. But they do not demand that the Lord come before them. For a pure devotee consider such a demand to be contrary to devotional service. Sri Chaitanya Mahaprabhu teaches this lesson in his Siksha Ashtaka. In his Siksha Ashtaka. Adarshana Marma Hata Karotuva. The devotee is always eager to see Lord face to face. But if he is broken hearted because he cannot see the Lord, even life after life, he will never command the Lord to appear. This is a sign of pure devotion. Aage. Aage, Vedant Prabhu. अच्छा कैसे कर रहे हो भूल गया मैं अरे नहीं नहीं पढ़ो 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 दे दो अरे कोई बात नहीं है पढ़ लो आप पीछे थे ना आप
आपको इसी बात के लिए अपना सूचित करना व्यर्थ है। मैं ब्रह्मा शिवजी तथा सारे देवताओं के साथ साथ दस जैसे प्रजापति की चिंगारियां मात्र वो मूल अर्थ स्वरूप आपके द्वारा क्योंकि हम आपके अपनी कविता के विषय में समझी जा सकती है। ये परम स्तर मोक्ष का वह साधन प्रदान करें जो ब्राह्मणों तथा देवताओं के लिए होगी। गोस्वामी ने आगे कहा जब ब्रह्मा समेत सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो वे उनके वहां आने का प्रयोजन समझ गए। अतएव भगवान ने बालक की गर्जना के समान अपनी गंभीर वाणी से देवताओं को उत्तर दिया तो हाथ जोर कर ध्यान पूर्वक नाम पड़े। यद्यपि देवताओं के स्वामी भगवान देवताओं के कार्यकलापों को स्वयं संपन्न करने में समर्थ थे फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद लेना चाहा। भगवान ने कहा हे ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं तुम सभी ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो कि मैं जो कुछ कहूंगा उससे तुम सबका कल्याण होगा। जब तक तुम उन्नत नहीं हो पा रहे हो तुम सबको धर्मों तथा असुरों के साथ
जब तक क्या सुनाई नहीं दिया था जोर से पढ़ना।
जब तक तुम उन्नत नहीं हो पा रहे हो तुम सबको दानवों तथा असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल चल रहा है। ये देवताओं अपना हित इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से भी संधि करनी पड़ सकती है। अपने हित के लिए मनुष्य को सर्व तथा चूहे के तर्क के अनुसार कार्य करना चाहिए।
सर्व और चूहे का तर्क क्या है ब्रू?
किसी के दिल में
घुसते जाता है ना हाँ। उसको खा जाता है।
जैसे
एक बास्केट होता है
उसमें हो सकता है चूहा और सांप दोनों फंस गए। अब सांप के पास चूहा है, खाने का चीज है, लेकिन सांप के पास दिमाग भी है, वो ये सोचता है कि अगर मैं इसको चूहे को खा भी लूंगा फिर भी मैं इस जाल में फंसा हुआ हूँ, बास्केट में मेरे को बंद कर दिया। तो इससे अच्छा वो क्या करता है, पहले समझौता करता है चूहे, वो कहता है चूहे को कि तुम ये बास्केट को निकालो और तोड़ो काटो और फिर आप भी निकल जाओ, मैं भी निकल जाऊँ और मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। इस तरीके से चूहा खुश हो जाता है, भाई मैं बच गया, मैं इसका काम कर देता हूँ, मैं निकलता हूँ। तो चूहा जैसे ही वो काट करके छेद बनाता है, सांप चूहे को भी खा जाता है और बाहर भी।
ये कितना कितना नंबर है प्रभु? ये
21।
अच्छा ठीक है, 25 पे रुक जाओ। तो यहाँ पे लिखा है कि ए पर्सन नो एज काला,
क्या है,
कालकुटा, ए पॉइजन नोन एज कालकुटा विल बी जेनरेटेड फ्रॉम द ओशन ऑफ मिल्क, बट यू शुड नॉट फियर इट। एंड व्हेन वेरियस प्रोडक्ट्स आर चार्न फ्रॉम द ओशन, यू शुड नॉट बी ग्रीडी फॉर देम और एंग्शियस टू ऑब्टेन देम, नॉर शुड यू बी एंग्री। परपोर्ट, इट अपीयर्स that by churning process many things will be generated from the ocean of milk, including poison, valuable gems, nectar and many beautiful women. The demigods were advised, however, not to be greedy for gems and or beautiful women, but to wait patiently for the nectar. The real purpose was to get the nectar. Similarly, devotees should not be attracted to any byproduct of devotional service such as name, fame, etc., but remain focused on achieving love of Krishna. Ab 37 tak padhi.
Sukadev Goswami ne aage kaha, he Raja Parikshit, देवताओं को इस प्रकार से सलाह देकर समस्त जीवों में श्रेष्ठ स्वच्छंद रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष से अंतर ध्यान हो गए। तब भगवान को सादर नमस्कार करने के बाद ब्रह्मा जी तथा शिव जी अपने अपने धामों को लौट गए। फिर सारे देवता महाराज बलि के पास गए। देवतियों में सर्वाधिक विख्यात महाराज बलि भली भांति जानते थे कि कब संधि करनी चाहिए और कब युद्ध करना चाहिए, इस तरह से यदि उनके सेना नायक विचुक थे और देवताओं का वध कर देना चाहते थे, किंतु जब महाराज बलि ने देखा कि सारे देवता उनके पास आक्रामक प्रवृत्ति त्याग कर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सेना नायकों को मना कर दिया और वे देवताओं को मारे नहीं।
इसका मतलब बलि को भगवान ने क्या, अच्छा ये तो दूसरे बलि है ना, ये भी इसमें भी थके
महाराज
के पोता। लेकिन कौन सी मनु के है ये तो पंचम मनु के है ना, छठे मनु के है।
देवगण विरोचन के पुत्र बलि महाराज के पास गए। देवगण विरोचन के पुत्र बलि महाराज के पास गए और उनके निकट बैठ गए। उस समय बलि महाराज की रक्षा असुरों के सेना नायकों द्वारा की जा रही थी और वे अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने सारे ब्रह्मांडों को जीत लिया था।
कब कहाँ तक पढ़ना
पड़ेगा? 37।
अत्यंत बुद्धिमान एवं देवताओं के राजा इंद्र ने बलि महाराज को विहीन शब्दों से प्रसन्न कर लेने के बाद उनके सारे प्रस्तावों को अत्यंत विनय पूर्वक प्रस्तुत किया जिन्हें भगवान विष्णु ने उन्हें सिखलाया था। राजा इंद्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों को बलि महाराज ने उनके सहायकों ने जिसमें शंबर तथा अरिष्टि ने भी प्रमुख थे वे एवं त्रिपुर के अन्य सारे निवासियों ने तुरंत ही मान लिया। ये शत्रुओं को दंड देने वाले महाराज परीक्षित जब देवताओं तथा असुरों ने परस्पर संधि कर ली और उन्होंने इंद्र द्वारा प्रस्तावित अमृत उत्पन्न करने की योजना को बड़े ही उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने की व्यवस्था की। तत्पश्चात देवताओं तथा अत्यंत शक्तिशाली एवं लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले असुरों ने अत्यंत बलपूर्वक मंदर पर्वत को उखाड़ा और जोरों से सिंहनाद करते हुए वे क्षीर सागर की ओर चल पड़े। विशाल पर्वत को दूर तक उठाकर ले जाने के कारण राजा इंद्र महाराज बलि तथा अन्य सारे देवता असुर थक गए। पर्वत को ले जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने उसे रास्ते में ही छोड़ दिया। जब पर्वत यह पर्वत जो मंदिर के नाम से विख्यात था अत्यंत भारी था तथा सोने का बना हुआ था वही गिर पड़ा और इससे अनेक देवता तथा असुर उछल गए। देवता तथा असुर हताश और विक्षुब्ध थे। उनकी भुजाएं जांघें तथा कंधे टूट गए। अतः वह गरुड़ की पीठ पर सवार सर्वज्ञ भगवान वहां पर प्रकट हुए। यह देखकर कि अधिकांश दानव तथा देवता पर्वत के गिरने से कुचले गए हैं भगवान ने उन सब पर अपनी दृष्टि दौड़ाई और उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए और उनके शरीरों के घाव भी जाते रहे।
तो ये इसमें है शायद ना ए 37 में 37 है ना। ऑब्जर्विंग द मोस्ट ऑफ द डिमांड्स एंड डेमिगॉड्स हैड बीन क्रश्ड बाय द फॉलिंग ऑफ द माउंटेन द लॉर्ड ग्लैंस ओवर देम एंड ब्रॉट देम बैक टू लाइफ दस दे बिकेम फ्री फ्रॉम ग्रीफ एंड दे इवन हैड नो ब्रूसेस ऑन देयर बॉडीज। Why did not Krishna take the poison and went to Shiva for rest?
Next.
Yeah, again, again.
फिर भगवान ने पर्वत को अत्यंत सरलता पूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तब स्वयं वे भी गरुड़ पर सवार हुए और देवताओं तथा असुरों से घिरे हुए क्षीर सागर चले गए।
गरुड़ जी की जय। अकेले लगे चले गए।
अब रूप गिरे तत्पश्चात पक्षीराज गरुड़ ने अपने कंधे से मंदर पर्वत को उतारा और वे उसे जल के निकट ले गए। तब भगवान ने उससे उस स्थान से चले जाने को कहा और वह चला गया।
अच्छा उसके बाद शुरू करें क्या है? व्हाई डिड नॉट कृष्णा टेक द पॉइजन एंड वेंट टू लॉर्ड शिवा फॉर रेस्क्यू? हुए है क्या वो और आ गए? चलिए चलिए इसमें तो सिर्फ पढ़ी है।
अध्याय 7 शिवजी द्वारा विस्पान से ब्रह्मांड की रक्षा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे कुरु श्रेष्ठ महाराज परीक्षित देवों तथा असुरों ने सर्पराज वासुकी को बुलवाया और उसे वचन दिया कि वे उसे अमृत में भाग देंगे। उन्होंने वासुकी को मंदर पर्वत के चारों ओर मथने की रस्सी की भांति लपेट दिया और क्षीर सागर के मंथन द्वारा अमृत उत्पन्न करने का बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रयत्न किया। भगवान अजीत ने सर्प के अगले हिस्से को पकड़ लिया और तब सारे देवताओं ने उनके पीछे होकर उसे पकड़ लिया। दैत्यों के नेताओं ने पूछ पकड़ना मूर्खतापूर्ण समझा क्योंकि यह सर्प का अशुभ अंग है। इसके स्थान पर वे अगला हिस्सा पकड़ना चाहते थे जिसे भगवान तथा देवताओं ने पकड़ रखा था क्योंकि वह भाग शुभ तथा महिमा युक्त था। इस प्रकार असुरों ने इस दलील के साथ कि वे सभी वैदिक ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं और अपने जन्म तथा कार्यकलापों के लिए विख्यात हैं आपत्ति उठाई कि वे सर्प के अगले हिस्से को पकड़ना चाहते हैं।
इस प्रकार असुरगण देवताओं की इच्छा का विरोध करते हुए मौन रहे। भगवान असुरों के मनोभावों को ताड़ गए, अतः वे मुस्कुराने लगे। उन्होंने विचार विमर्श किए बिना तुरंत ही सांप की पूंछ पकड़कर उनका प्रस्ताव मान लिया और सारे देवता उनके साथ हो लिए। सांप को किस स्थान पर पकड़ना है यह तय करने के पश्चात कश्यप के पुत्र देवता तथा असुर दोनों ने क्षीर सागर के मंथन से अमृत पाने की लालसा से अपना अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। ये पांडुवंशी, जब क्षीर सागर में मंदर पर्वत को इस तरह मथानी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा था तो उसका कोई आधार न था, अतः असुरों तथा देवताओं के बलिष्ठ हाथों द्वारा पकड़ा रहने पर भी वह जल में डूब गया। क्योंकि पर्वत दैवी शक्ति से डूबा था, अतः देवता तथा असुरगण निराश थे और उनके चेहरे कुम्हलाए से प्रतीत होते थे। भगवत इच्छा से जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसे देखकर असीम शक्तिशाली एवं अच्युत संकल्प वाले भगवान ने कछुए का अद्भुत रूप धारण किया और जल में प्रवेश होकर विशाल मंदिर पर्वत को उठा लिया। जब देवताओं तथा असुरों ने देखा कि मंदिर पर्वत उठाया गया है तो वे प्रफुल्लित हो गए और पुनः मंथन करने के लिए प्रोत्साहित हुए। यह पर्वत विशाल कछुए की पीठ पर टिका था जो एक विशाल द्वीप की भांति 800,000 मील तक फैला हुआ था। हे राजन, जब देवताओं तथा असुरों ने अपने बाहुबल से अद्भुत कछुए की पीठ पर स्थित मंदिर पर्वत को घुमा घुमा दिया तो कछुए ने पर्वत के इस घूमने को अपना शरीर खुजलाने का साधन मान लिया। इससे उसे अत्यंत सुखप्रद अनुभूति हुई। तत्पश्चात भगवान विष्णु उन सबको प्रोत्साहित करने एवं विभिन्न प्रकार से शक्ति देने के लिए असुरों में रजोगुण के रूप में, देवताओं में सतोगुण के रूप में तथा वासुकी में तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हो गए। तब मंदिर पर्वत की चोटी पर भगवान ने अपने आप को हजारों भुजाओं सहित प्रकट किया जो अन्य विशाल पर्वत की तरह लग रहे थे और एक हाथ से मंदिर पर्वत को पकड़े रखा। तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं ने उच्च लोकों में भगवान की स्तुति की और उन पर फूलों की वर्षा की। देवता तथा असुर अमृत के लिए मानो मतवाले होकर कार्य कर रहे थे क्योंकि भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित कर रखा था। वे पर्वत के ऊपर और नीचे भी नीचे सभी जगह थे और वे देवताओं, असुरों, वासुकी तथा पर्वत में भी प्रविष्ट हो गए थे। देवताओं तथा असुरों के बल से क्षीर सागर इतनी शक्ति के साथ विलोड़ित हो रहा था कि जल के सारे मगरमच्छ अत्यधिक विचलित हो उठे, तो भी समुद्र का मंथन इस तरह चलता रहा। वासुकी के हजारों नेत्र तथा मुख थे, उसके मुख से धुआं तथा अग्नि की लपटें निकल रही थी जिससे कोलोम, काले, बलि, इल्वल आदि असुरगण पीड़ित हो रहे थे। इस तरह सारे असुर जो जंगल की आग से जले हुए सरल वृक्ष के भांति प्रतीत हो रहे थे धीरे धीरे शक्तिहीन होते गए। क्योंकि वासुकी की दहकती सांस से देवता भी प्रभावित हुए थे, अतएव उनकी शारीरिक कांति घट गई और उनके वस्त्र, मालाएं, आयुध तथा उनके मुखमंडल धुएं से काले पड़ गए। किंतु भगवत कृपा से समुद्र के ऊपर बादल प्रकट हो गए और वे मूसलाधार वर्षा करने लगे। समुद्री लहरों से जल के कण लेकर मंद समीर बहने लगे जिससे देवताओं को राहत मिल सके। जब श्रेष्ठतम देवताओं तथा असुरों के द्वारा इतना उद्यम करने पर भी क्षीर सागर से अमृत नहीं निकला तो स्वयं भगवान अजीत ने समुद्र को मथना प्रारंभ किया। भगवान श्याम बादल की भांति दिख रहे थे। वे पीले वस्त्र पहने थे, उनके कान के कुंडल बिजली की तरह चमक रहे थे और उनके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। वे फूलों की माला पहने थे और उनकी आंखें गुलाबी थी। विश्व भर में अभय देने वाली अपनी बलिष्ठ यशस्वी भुजाओं से उन्होंने वासुकी को पकड़ लिया और वे मंदिर पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र का मंथन करने लगे। जब वे इस प्रकार व्यस्त थे तो वे इंद्रनील नामक सुंदर पर्वत की भांति प्रतीत हो रहे थे। मछलियां, हांगर, कछुए तथा सर्प अत्यंत विचलित एवं क्षुब्ध थे। सारा समुद्र उत्तेजित हो उठा और व्हेल, समुद्री हाथी, घड़ियाल तथा तिमिंगिल मछली जैसे बड़े बड़े जलचर सतह पर आ गए। जब इस प्रकार के समुद्र मंथन हो रहा था तो इससे सर्वप्रथम हालाहल नामक घातक विष उत्पन्न हुआ। हे राजन, जब वह उग्र विष ऊपर नीचे तथा सभी दिशाओं में वेग के साथ फैलने लगा तो सारे देवता भगवान समेत शिवजी सदाशिव के पास गए। अपने को असुरक्षित तथा अत्यंत भयभीत पाकर वे सब उनकी शरण मांगने लगे। देवताओं ने शिवजी को तीनों लोकों के मंगलमय अभ्युदय हेतु तपस्या करते हुए अपनी पत्नी भवानी सहित कैलाश पर्वत की चोटी पर देखा। मुक्ति की कामना करने वाले मुनिगण उनकी पूजा कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक प्रार्थना की। वहाँ तक प्रणाम,
वो तो पूरा है, इसलिए तो शायद यहाँ पे है कि why did not Krishna take poison and went to Lord Shiva for rescue? Anyway, पढ़ लेते हैं इसको। 6.4.26
कैसे
हो गया? Anyway,
तो
पढ़ लिया हुआ हमने। कोई चाहे तो यह प्रश्न कर सकता है कि जब साक्षात भगवान वहाँ उपस्थित थे तो वे सारे देवताओं तथा प्रजा को साथ लेकर सदाशिव की शरण में क्यों गए? उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? इस प्रसंग में शील मध्वाचार्य सावधान करते हैं। रुद्रस्य यशसो अर्थाय स्वयं विष्णुर विषम विभु न संजहे समर्थोपि वायुं चेचे प्रशान्ते। भगवान विष्णु स्थिति को संभालने में सक्षम थे किंतु शिवजी को श्रेय प्रदान करने के लिए ही उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। शिवजी ने बाद में सारा विष पी लिया और उसे अपने गले में रख लिया।
उसके बाद
मुनि परपट खत्म।
उसका आगे पढ़ो।
प्रजापतियों ने कहा, हे देव श्रेष्ठ महादेव, हे समस्त जीवों के परमात्मा तथा उनकी सुख समृद्धि के कारण हम आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। अब आप तीनों लोकों में फैलने वाले इस उग्र विष से हमारी रक्षा करें। हे प्रभु, आप सारे विश्व के बंधन तथा मोक्ष के कारण हैं, क्योंकि आप इसके शासक हैं। जो लोग आध्यात्मिक चेतना में बढ़े चढ़े हैं वे आपकी शरण में जाते हैं, अतएव आप उनके कष्टों को दूर करने वाले हैं और आप ही उनकी मुक्ति के कारण हैं, अतएव हम आपकी पूजा करते हैं। हे प्रभु, आप स्वयं प्रकाशित तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अपनी निजी शक्ति से इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं और जब आप सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के नाम अपना कर लेते हैं। आप समस्त कारणों के कारण आत्म प्रकाशित अचिंत्य निराकार ब्रह्म है जो मूलतः पर ब्रह्म है। आप इस दृश्य जगत में विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। हे स्वामी, आप वैदिक ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप भौतिक सृष्टि प्राण इंद्रियों पांच तत्वों तीन गुणों तथा महत तत्व के मूल कारण हैं। आप नित्य काल संकल्प तथा सत्य और रित कही जाने वाली दो धार्मिक प्रणालियां हैं। आप तीन अक्षरों अ उ तथा मो वाले ओम शब्द के आश्रय हैं। ये समस्त लोगों के पिता विद्वान लोग जानते हैं कि अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण कमल हैं, आप निखिल देव रूप हैं, नित्य काल आपकी गति है, सारी दिशाएं आपके कान हैं और जल का स्वामी वरुण आपकी जीव है। 27 हे प्रभु,
ऐसा कुछ नहीं है।
26
6.4.26 क्या है?
8 and 8
यहाँ पे लिखा है थ्री स्टेज ऑफ वेकफुलनेस, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप। थ्री स्टेज ऑफ वेकफुलनेस, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप। लिविंग एंटिटी इज बोर्न ऑफ पर्स्पिरेशन, द लिविंग बींग बोर्न ऑफ एग्स, द ट्रीज एंड प्लांट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम अर्थ एंड द लिविंग एंटिटी इज बोर्न फ्रॉम एम्ब्रायोस। पता नहीं, ज्यादा लिखा नहीं है तो अधूरा है, इसके नीचे कुछ नहीं है।
26 के तात्पर्य दिया है। श्रुति मंत्रों में कहा गया है, अग्नि सर्व देवता, अग्नि सारे देवताओं का पुंज है, अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि के द्वारा ही भगवान सारी यज्ञ आहुतियां स्वीकार करते हैं। 27 हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि है, वायु आपकी श्वसन क्रिया है, सूर्य आपकी आंखें हैं तथा जल आपका वीर्य है। आप समस्त प्रकार के उच्च तथा निम्न जीवों के आश्रय हैं। चंद्रदेव आपका मन है, उच्चतर लोक मंडल आपका सिर है। हे प्रभु, आप साक्षात तीनों वेद हैं, सातों समुद्र आपके उदर हैं और पर्वत आपकी हड्डियां हैं। सारी औषधियां लताएं तथा वनस्पतियां आपके शरीर के रोए हैं। गायत्री जैसे वैदिक मंत्र आपके शरीर के सात कोष हैं और वैदिक धर्म पद्धति आपका हृदय है। हे प्रभु, पांच महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र आपके पांच मुखों के द्योतक हैं जिनसे 38 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र उत्पन्न हुए हैं। आप शिव नाम से विख्यात स्वयं प्रकाशित हैं, आप परमात्मा नाम से प्रत्यक्ष परम सत्य के रूप में स्थित हैं। हे भगवान, आपकी छाया अधर्म में दिखती है जिससे नाना प्रकार की अधार्मिक और धार्मिक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तथा तमो आपके तीन नेत्र हैं। छंदों से युक्त सारे वैदिक ग्रंथ आपसे उद्भूत हैं, क्योंकि उनके संग्रहकर्ताओं ने आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके ही उन शास्त्रों को लिखा है। हे गिरीश, क्योंकि निराकार ब्रह्म तेज सतो रजो तथा तमो गुणों से परे हैं, अतएव इस भौतिक जगत के विभिन्न निदेशक लोकपाल न तो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, न ही यह जान सकते हैं कि वह कहाँ है। वह ब्रह्मा, विष्णु या स्वर्ग के राजा महेंद्र द्वारा भी ये नहीं है। जब आपकी आंखों से उद्भूत लपटों तथा चिंगारियों से प्रलय होता है तो सारी सृष्टि जलकर राख हो जाती है, तो भी आपको पता नहीं चलता कि यह कैसे होता है। अतएव आपके द्वारा दक्ष यज्ञ, त्रिपुरासुर तथा कालकोट विष विनष्ट किए जाने के विषय में क्या कहा जा सकता है। ऐसे कार्यकलाप आपको अर्पित की जाने वाली स्तुतियों के विषय नहीं बन सकते। सारे विश्व को उपदेश देने वाले महान आत्मतुष्ट व्यक्ति अपने हृदयों में आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हैं, किंतु जब आपकी तपस्या को न जानने वाले व्यक्ति आपको उमा के साथ विचरते देखते हैं तो वे आपको भ्रमवश कामी समझते हैं, अथवा जब वे आपको श्मशान में घूमते हुए देखते हैं तो भ्रमवश वे आपको अत्यंत निशंस तथा ईर्ष्यालु समझते हैं। निसंदेह वे निर्लज हैं, वे आपके कार्यकलापों को कभी नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी तथा अन्य देवतागण जैसे व्यक्ति तक आपकी स्थिति नहीं समझ सकते, क्योंकि आप चर तथा अचर सृष्टि से भी परे हैं। क्योंकि आपको सही रूप में कोई नहीं समझ सकता तो फिर भला कोई किस तरह आपकी स्तुति कर सकता है। यह असंभव है। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्राणी हैं, अतएव ऐसी परिस्थितियों में हम आपकी ठीक से स्तुति नहीं कर सकते, किंतु हमने अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। हे महान शासक, आपके हमारे लिए आपके असली स्वरूप को समझ पाना असंभव है। जहाँ तक हम देख पाते हैं, आपकी उपस्थिति हर एक के लिए सुख समृद्धि लाती है। इसके परे कोई भी आपके कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। हम इतना ही देख सकते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिव जी सारे जीवों के प्रति सदैव कल्याणकारी हैं। जब उन्होंने देखा कि सारे जीव विष के सर्वत्र फैलने के कारण अत्यधिक उद्विग्न हैं, तो वे अत्यंत दयाद्र हो उठे। अतः उन्होंने अपनी नित्य संगिनी सती से इस प्रकार कहा। शिव जी ने कहा, हे प्रिय भवानी, जरा देखो तो किस तरह ये सारे जीव क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न विष के कारण संकट में पड़ गए हैं। जीवन संघर्ष में लगे समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। निश्चय ही स्वामी का कर्तव्य है कि वह पीड़ित आश्रितों की रक्षा करे। भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को भी संकट में डालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। हे मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई दूसरों के लिए उपकार के कार्य करता है तो भगवान हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी अन्य सारे प्राणियों के साथ अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। अतएव मुझे यह विष पीने दो, क्योंकि मेरे कारण सारे जीव इस प्रकार सुखी हो सकेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार भवानी को सूचित करके शिव जी वह विष पीने लगे, और भवानी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे शिव जी की क्षमताओं को भली भांति जानती थी। तत्पश्चात मानवता के लिए शुभ तथा उपकारी कार्य में समर्पित शिव जी ने कृपा करके सारा विष अपनी हथेली में रखा और वे उसे पी गए। अपयश के कारण क्षीर सागर से उत्पन्न विष ने मानो अपनी शक्ति का परिचय शिव जी के गले में नीली रेखा बनाकर दिया हो, किंतु अब वही रेखा भगवान का आभूषण मानी जाती है। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। इस कार्य को सुनकर भवानी, दक्ष कन्या, ब्रह्मा, विष्णु समेत सामान्य लोगों ने देवताओं द्वारा पूजित और लोगों को वरदान देने वाले शिव जी के इस कार्य की बुरी बुरी प्रशंसा की। जब शिव जी विस्पान कर गए थे कर रहे थे उस समय उनके हाथ से जो थोड़ा सा विष गिरकर छितर गया उसे बिच्छू सर्प बिशरी और जिया तथा अन्य पशु जिनका दंश विषैला होता है पी गए।
ततया भी आएगा ना उसमें,
इस तरह सातवां अध्याय पूरा हो गया।
कितना ही करना था हमें,
सिलेबस
कहाँ से मिलेगा? वह तो यही तक था। तो अभी इस क्लास कितने बजे, तो एक बजे तक चलता है, तो अभी हमारे पास 20 मिनट समय है, तो 20 मिनट आप लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं, जो जो पॉइंट आप लोग को वो लगा तो आपस में चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न उत्तर, प्रश्न सही, प्रश्न पूछिए, मैं भी आप लोग में से हूँ। प्रश्न प्रश्न उत्तर पूछ, प्रश्न सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं उनके प्रश्न, तो आपको पता होगा बिल्कुल पूछिए गुरु जी। कौन बताएंगे? अजन्म कृष्ण आते हैं तो पूछ लेते हैं। अच्छा प्रश्न है,
मुझे डिस्कशन के बेसिस पे जैसे मैंने थोड़ा सा पढ़ा था इसमें, तो इसमें ना जब जब ये देवताओं जब भगवान के पास अप्रोच किए,
जब
देवताएं जब भगवान को अप्रोच किए थे कि ऐसे दानवों का बहुत बढ़ रहा है, उनका अत्याचार बढ़ रहा है, तो हम क्या करें, तो उसमें फिर परफेक्ट मतलब ट्रांसलेशन में लिखा है कि भगवान ने वो ऐसे जो जो समुद्र मंथन की लीला को एंजॉय करने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया, तो एक्चुअली ये उनकी उनको अपने अपने आप को एंजॉय करने के लिए उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया, तो अब वो खुद ही उसको कर एंजॉय कर, उसका कोई पर्पस नहीं है, वो अपने आप को एंजॉय कर।
अमृत लाभ रूप बताना चाहते
क्या होता है देवता ही वास्तव में सत्य सत्य नहीं रहते हैं गौरव जी, इसलिए वही अधिकारी है कि ब्रह्मांड का जो वो सम्मान लेते हैं, ठीक है, असुगढ़ कभी भी नहीं रहेंगे अपने गुण का नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी देवता गलती करते हैं, जैसे गलती की तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम मिलनी चाहिए, जो कर्म का विधान है भौतिक देव का, ठीक है, तो भगवान व्यवस्था करते हैं, इसके लिए उन्हें स्पिरिचुअल गलती की दुर्वासन के प्रति या अपने गुरु के प्रति तो उनको मिलती है, और देवता ने क्या सोच करें असल में अपने गुरु का चित्र है पूजा दी थी, तो बलि महाराज तो उसको दोनों का फल मिला, लेकिन अल्टीमेटली उनको फल मिला सुनोगे कुछ समय के लिए ना राज्य मिले, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर भी देवता ही अधिकारी है ना राज्य करने के गुरु जाकर, इसलिए भगवान उसको दोबारा सेटल करने के लिए नॉर्मल पोजिशन मारने के लिए ऐसा प्लान करते हैं, उनको दोबारा स्टेडिस करने के लिए अपने अपने कर्म जोड़ने दो गए देवता में दो गए और अपने दोबारा बैलेंस करने के लिए भगवान करते हैं।
ठीक है। बिल्कुल सम्मत, सही शास्त्र सम्मत, मुझे ज्यादा पता है शास्त्र सम्मत कि भगवान सबको सेवा में लगा के रखे, सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। अल्टीमेट तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट यही है कि देवताओं की मदद करना चाहते हैं भगवान। और अब अल्टीमेट क्या कारण है ये तो भौतिक सृष्टि का, वो तो भविष्य आने के बाद पूछ लेंगे। अभी यहाँ का जो पर्पस है वो तो यही है कि देवताओं को क्या दिया जाए, उनके अधिकार दिया जाए वापस, क्योंकि यहाँ पे लिखे है कि डिवोटी और जो ब्रह्मा जी है वो भी वो हो जाते हैं, मतलब कंसर्न हो जाते हैं जब असुरों के हाथ में क्या आ जाता है, पावर आ जाता है। आजन्मा विष्णु भी मंदिर में लेक्चर दे रहे थे, अगर किसी का किसी को अगर जानना हो तो हम उनको पावर देके देख सकते हैं।
लेकिन बनी महाराज तो स्वयं भगवान के भक्त हैं,
तो बात नहीं,
नहीं कोई बात नहीं। हाँ
उनके पास पावर आ रहा है तो अच्छी है,
तो भगवान के भक्त है तो क्या हो गया। नाउ ही गॉट्स ऑल अथॉरिटी। अब वो जो समाज के जो समाज भगवान ने जो नियम बनाए हैं, क्या वो हर नियम को तोड़ने की उनको अथॉरिटी मिल जाता है। इसीलिए जो है जब हम देखते हैं वो चित्र की कथा भी आते हैं, डिवोटी महाभागवत है, इसका अर्थ ये नहीं, महाभागवत होने का अर्थ यही है कि हर नियमों को सम्मान करना। तो अगर बलि महाराज है भी, लेकिन साधारण नियम यही है कि क्या कि देवता क्या करे, राज करे, ये साधारण नियम है ना सत्वगुण। लेकिन महाभागवत अब सत्वगुण से ही पढ़े होते हैं, शुद्ध सत्वगुण तो अच्छा तो है, तो अच्छा लग भी रहा था, लेकिन जब देवता लग जब उसका ऑब्जेक्शन उठाए तो उनका अधिकार है, आप समझ रहे हैं। भक्त तो है ही महान, और भक्त का रहने का जगह कौन सी है, धाम कौन सा, तो इसीलिए उनको अगले जीवन तक वो करवाया भगवान ने।
एक चीज
हो रहा था, हमारे भी ऐसे थे भक्त होते हैं, जैसे कभी कभी हम तो भक्त है, हम कोई भी नियम तोड़ सकते हैं, हमें भी आ जाता है, हम तो हर नियम से क्या है पढ़े, ये क्या भौतिक नियम हमें क्या छू लेंगे ऐसा करते कि नहीं करते देखने के लिए देखें कि हम भी उसी परंपरा में है, तो बड़े बड़े चीजें कही कही छोटी छोटी चीजें हमें भी है इसलिए हम देखते हैं जो सीनियर डिवोटीज होते हैं या महाराज वगैरह है, वो हर चीज को जो है प्रॉपरली वो करते हैं, मतलब रेस्पेक्ट करते हैं, प्रॉपर रेस्पेक्ट करते हैं।
वो तो महाभागवत है, परंतु जो नीचे सारे का सूर्य है ना देखते हुए, तो वो बड़े देखते
हुए क्या बोल रहे थे प्रभु जी।
जी ये सब हो रहा था अमृत के लिए, अमृत पी के मतलब अमर हो जाते
हैं। अमृत अमृत बहुत जरूरी है सबके लिए, जरूरी है ना अमृत
इसका मतलब अगर वो अमर हो गए तो इसका मतलब वो मरेंगे, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्यादि तो वहाँ पे भी है, उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी है।
अच्छा कौन बताएंगे
जीवन के बढ़ाने वाला,
लिखा है इसमें, इसमें तो लिखा है अवधि बनाने का है। अमृत, अमृत जो है ये प्राणवायु की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। तो अमृत पीने से क्या होता है, व्यक्ति का आयु दीर्घायु मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाते हैं।
मरेंगे तो नहीं,
मरते नहीं है स्वर्ग में, बाहर निकाल देते जैसे हमें शरीर से बाहर निकाल देते हैं ना, उनको स्वर्ग से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा वर्णन है ना कहीं पे कि वो बीच में वो लोग आता है जहाँ पे उनके शरीर को खा जाते हैं, इस तरह से कुछ है ना, कुछ राक्षस गण का है ना, या कुछ स्वर्ग और इसके बीच में है। लेकिन स्वर्ग में नहीं मरते, स्वर्ग के बाहर मरते होंगे लेकिन स्वर्ग में। इसलिए तो अमृत का व्यवस्था किया भगवान ने।
लेकिन ये मरे नहीं थे,
नहीं कुचल गए ऐसे लिखा है, मर गए ये नहीं लिखा है, कुचले गए ये लिखा है। इसलिए तो वेद है वहां पे भी, स्वर्ग में कैसे मरेंगे, तो वहां पे तो दुख छा जाएगी ना, जैसे मर जाएंगे तो दुख छा जाएंगे। बाय चांस कभी हो जाए जैसे कुछ ले गए, क्योंकि इस संसार में हर जगह पे क्या है, इस संसार में जैसे स्वर्ग है, लेकिन अगर असुर प्रवेश करेंगे तो स्वर्ग को स्वर्ग रहने देंगे नहीं देंगे, तो जरूरत है इसलिए इमरजेंसी कंडीशन पे है वो। कहाँ पे क्यों, स्वर्ग में भी मार सकते हैं, जैसे हमारे भक्त के समाज है। अब क्या भक्त के समाज में कभी गलत चीजें नहीं हो जाती है, क्या बाहर निकाल के करते हैं, चलो बेस से बाहर निकाल के करवाते हैं। दोनों चीजें भगवान की, भगवान ने एक जगह बनाया जैसे हम लोगों ने बनाया, अब इससे हमसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति इसको तोड़ सकते, इस बिल्डिंग को भी तोड़ सकते, पहले हम लोगों ने बनाया। तो इसी प्रकार से भगवान की शक्तियों के बीच में ही चीजें होती रहती है। एक भगवान की सात्विक शक्ति है और असुर तामसिक शक्ति है, भगवान की ही शक्तियां है जिसमें जीवात्मा निमित्त मात्र बन रहे हैं। प्यूरिफाई अगर हम होना चाहते हैं तो हो जाते हैं, वरना कभी कभी हम सीखते भी नहीं है। काफी सारे इंसिडेंट्स हमारे जीवन में भी होते हैं, लेकिन हम उसको कहा कृष्ण की कृपा के रूप में लेते हैं, जो हालांकि भक्ति में हमेशा सिखाया जाता है, हम नहीं लेते हैं, हम नहीं सीखते हैं। कभी कभी कुछ भक्ति छोड़ के कुछ समय के लिए चले जाते हैं, और कभी कभी किसी भक्त के जीवन में ऐसा हो रहा होगा, ऐसा भी है, लेकिन हम कहा उसको भगवान की कृपा समझ के ग्रहण करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि भले ही भगवान सिखाना चाह रहे और हम सीखे, ये आवश्यक नहीं है। हम उसको भगवान को दोष देके कि भगवान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, भगवान को भी हम और दूर भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम देखते हैं, फिर भागवतम क्लास में भी कोई आते हैं सुनते हैं और उनको बहुत गुस्सा क्रोध करके चला जाता है, वो कभी नहीं आते। तो पहले तो ऐसा दशा में था, कोई बुलाता तो चला जाता, अब आने के बावजूद तो सुनने के बाद भागवतम ऐसा हुआ कि अब तो कभी नहीं आना, तो अब इसको क्या कहोगे आप कि वहां पे भागवतम क्लास में उनको गलत चीजें दिया गया कि अब वो आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने सही चीज दिया, उन्होंने उसको गलत लिया। इस प्रकार से भगवान की सारे सृष्टि जो है ये भगवान की कृपा ही है, या फिर कहीं गलत है ही नहीं, लेकिन हम उसको गलत तरीके से लेते तो गलत हमारे लिए गलत हो जाता है। इसीलिए भक्ति में आने के बाद अगर गुरु और कृष्ण के निर्देश पे हम हर चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, देन एवरीथिंग इज करेक्ट, लेकिन उसी चीज को अगर हम गलत इस्तेमाल कर लेते वही चीज हमें कष्ट देने लगती है। भौतिक संसार में हम आए, अगर इस भौतिक संसार में आके हम हर भौतिक चीज को भगवान की सेवा में लगाए जैसे प्रभुपाद ने सबको लगा दी, तो यही चीज जो है हमारा मुक्ति का कारण हो जाता है। लेकिन आए आके हम यहाँ फंस गए क्यों, क्योंकि हमने भगवान की सेवा में नहीं लगाया गलत, तो क्या है भौतिक संसार गलत है क्या? नहीं, ऐसा हमें लगता है कि हम भोग कर रहे हैं, लेकिन क्या भोग कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। जब हम आए थे भोग करने के लिए, तो अभी जो हम भोग कर रहे हैं हमेशा लग रहा है कि हम भोग कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को कुछ भी नहीं मिल रहा है ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए प्रतिबिंब कहा गया है इसको। ऐसा प्रतीत होता है कि सुख मिल रहा है, लेकिन इसलिए फ्रस्ट्रेशन है। अदरवाइज अगर भोगने के लिए आए और भोग रहे होते तो फ्रस्ट्रेशन क्यों होता? ऐसा प्रतीत होता है, लगता है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय को अच्छा लगता है, लेकिन चेतना अपने आप को इंद्रिय के साथ इतना ज्यादा है। जैसे मान लीजिए ये प्रभु जी है, अब प्रभु जी और मेरा मित्रता इतना गहरा है कि ऐसा लगता है कि प्रभु जी खाते ही मेरा, मुझे लगता है कि मेरा पेट भर गया, लेकिन पेट थोड़ी भरेगा, पेट में जाएगा तभी तो भरेगा। उसी प्रकार से आत्मा को ऐसा लगता है, इसलिए इसको भ्रम कहते हैं। ये लगता है कि भोग रहे हैं, लेकिन भोग नहीं रहे, इसलिए हमेशा अतृप्त रहता है, अतृप्त आत्मा है। तो आपको समझ में आया क्या? हाँ, तो इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें किसी को डाउट नहीं है, किसी में डाउट नहीं। और एंड में यही रियलाइजेशन, ये नॉलेज आ जाता है उससे, ये भौतिक प्रकृति के संस्पर्श में रहने के कारण ये ज्ञान उदित हो जाता है हमें कि वास्तविकता में इस संसार में क्या है, सुख है ही नहीं। किसके लिए? आत्मा के लिए। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक नहीं, भौतिक है। आत्मा का प्रॉब्लम क्या है? आत्मा का प्रॉब्लम यही है कि आत्मा आध्यात्मिक है तो भौतिक सुख कैसे लेंगे? क्या ऐसा हम कह नहीं सकते कि कृष्णा भगवान इतने दयालु हो गए? कृष्णा भगवान की एक चीज में सब चीज सम्मिलित है, एब्सोल्यूट है। भगवान एक चीज में ही हर चीज करते हैं। तो हमें से विशेष रूप से हमारे लिए अच्छा है कि हम ऐसा सोचे कि हमारा प्यूरिफाइंग के लिए या हमारे एक्सपेक्टेशन, लेकिन भगवान की एक्सपेक्ट क्या है ये बताना। भगवान के अनेक एक्सपेक्ट हो सकते, भगवान भौतिक प्रकृति भी भगवान की है, क्या पता भौतिक प्रकृति को भगवान भोग रहे हैं, हम इसमें निमित्त मात्र है, क्या पता। तो किस क्राइटेरिया में चूज किया भगवान ने? कितना अच्छा प्रश्न है ना, भगवान ने किस, भगवान को पूछना पड़ेगा तो बताइए। भगवान की वो है, मतलब हर चीज भगवान की है। भगवान परम भोक्ता है, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम। तो अगर भगवान नहीं भोगेंगे तो हम सेवा कैसे करेंगे? और क्या इसमें डाउट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं चाहेंगे? लेकिन ये हमारा मूर्खता है कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। और एक इस कारण से, ये दो कारण से है, एक हमारी इच्छा और दूसरा भौतिक प्रकृति, ये दोनों कारण है। हमारा इच्छा है तभी हम है, अभी भी इच्छा है, अभी भी देख लो आप, पहले की तो छोड़ देते हैं चलो कैसे अभी भी इच्छा है कि अभी हम लोग आप कृष्णा कॉन्शियस आ गए, प्रभुपाद ने बता दिया, धाम से गोलोक धाम से लेके हरिनाम आ गए, चैतन्य महाप्रभु आ गए, प्रभुपाद आ गए, कि अभी हमारा इच्छा समाप्त हो गई? इच्छा की बात कर रहा हूं, कंडीशनिंग तो चलो जीवात्मा बद है ये ठीक है, बांध के रखा है अपने अपने जगह पे, सब लोग वो है, वहां से उड़ नहीं सकते धाम में, लेकिन क्या इच्छाएं समाप्त हो गई हमारे? भौतिक इच्छाएं क्यों नहीं हुई? तो दिस इज द फाइट। इसलिए कहते हैं अन्ना अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि। तो अभिलाषिता अन्ना अभिलाषा, और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, सब बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया? बताया है कि हम पूरी तरह से पूर्णतया अपना शरीर, जनरली ऐसा होता है, भगवान ने एक बहुत अच्छा सुविधा दिया है हमें कि शरीर के द्वारा हम क्या है, बाधित है। अब ये शरीर जहां है, हमारा ध्यान भी, मन भी, हर चीज वहीं पे रहने के लिए क्या है, ये सीमित है। तो इसलिए अच्छा है हम शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं और लगा के उसमें मन लग जाता है, शरीर को लगाते हैं तो मन भी लग जाता है, ध्यान भी लग जाता है, तो पूर्णतः हम भगवान की सेवा करते हैं तो इच्छा भी शुद्ध हो ही जाता है। तो बताया तो है, सारा तो बताया, सब कुछ तो दिया है, लेकिन हमने लिया नहीं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद।
क्या नाम है हमारे अब्दुल निमय भूमिका?